ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
போலியே சச்சிதானந்த பகவானிக்கு சத்கன் சித்கன் ஆனந்த கன் கல்யாண குணகண நிலைய அவ்யக்தவ்நாசி சர்வேஸ்வர் ஜகத் நியந்தா ஜகதாதார் பிரபு கி அசீம் அஹேது கிருபா கே சாத் ஈஷாவாஸ்ய உபநிஷத் கே மாத்யம் சே ஆப் ஹம் சப் லோக் நிஜ ஸ்வரூப் ஔர் நிஜ ஜீவன் கி சத்யதா நிஜதா अपने आपकी प्राप्ति के लिए, स्वयं को समझने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए, स्व को जानने के लिए, क्योंकि स्व को ही पहचानना है, स्व को ही जानना है, और जो कुछ भी कहना है, सुनना है, बताना है, सिखाना है, पढ़ाना है, समझाना है, वह किसको? स्व को. इसीलिए संतों ने जो कुछ भी कहा वो किसी और को इशारा करके नहीं कहा, बल्कि जो कहना था उन्होंने कहा अपने मन से, मन को कहा. जो समझाया मन को समझाया, जो सिखाया पढ़ाया किसको? बोले अपने मन को, क्योंकि मन ही को तो हमें तैयार करना है ना. रेमन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान. गुरु नानक अपने आप को कहते हैं कि हे मन तू ज्योतिर्मय है, तो अपने मूल को पहचान. इस मन में ही ज्ञानांश ज्ञान है, इसलिए उन्होंने कहा कि तू अपने मूल को पहचान. इसी प्रकार संतों ने अपने मन के माध्यम से ही जगत को उपदेश किया, स्वयं अपने मन को सिखाया, तो हमें भी अपने मन की ओर देखना है. मन साधे सब सधे, यदि मन सध गया तो सब सध गया, और मन बिगड़ गया तो लोक भी बिगड़ गया और परलोक भी बिगड़ गया. मैं हमेशा कहती हूं कि हमें किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति बाह्य है, आती है और जाती है, आती जाती इन परिस्थितियों के साथ अपने मन को लिप्त करके यदि मन को बिगाड़ लेंगे तो बात बहुत बड़ी हानि हो जाएगी. इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपना मन न बिगड़ने पावे, मन की प्रसन्नता बनी रहे, इसी का नाम भक्ति है. भक्ति कोई बहुत बड़ी ऊंची चट्टान नहीं है जिसको चढ़ के हमें जाना है और उस शिखर में पहुंच करके हम कहें कि हम तो भक्ति की ऊंचाई पर पहुंच गए, ऐसी कोई बात नहीं है. अपने मन का समत्व, अपनी मन की प्रसन्नता सतत बनी रहे, इसी का नाम भक्ति है. हमारे मन की प्रसन्नता कब बनी रहेगी? मन यदि परिस्थितियों के साथ लिप्त हो जाएगा और उनके साथ जुड़ जाएगा तो मन में प्रसन्नता नहीं रह पाएगी, मन खिन्न होगा, अशांत होगा. अशांतस्य मनः, जिसका मन अशांत हो गया हो उसे कहां शांति मिल सकती है. और बुद्धि में विपर्य है, भ्रांति है. बुद्धि भी बहुत साफ और स्पष्ट होनी चाहिए. किसी को भी हम कहते हैं साफ साफ बताओ, साफ साफ बोलो, तो आप जब साफ चाहते हैं तो आपके अपने लिए भी अपनी सोच, मैं हमेशा कहती हूं, बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। हमको अपना, अपने प्रति, अपने आप से, अपने मैं से हमारी जो सोच है बुद्धि की, वो बड़ी साफ और स्पष्ट होगी। और स्पष्ट बुद्धि होने पर मन, बुद्धि स्पष्ट हो, स्पष्ट बुद्धि होने पर ही, साफ होने पर ही बुद्धि हमारी सम रह सकती, सम बुद्धि। अडिग, अचल, स्थिर बुद्धि में स्थिरता हो, जहां स्थिरता होगी वहां समता होगी। बुद्धि के, बुद्धि में समता का नाम ही ज्ञान है, छोटे सरल शब्दों में समझ। बुद्धि सम रहे उसी का नाम ज्ञान है, मन में प्रसन्नता रहे उसी का नाम भक्ति है। मन और बुद्धि हमारे दोनों ठीक, मन सम रहे माने उसमें न कृतत्व का अभिमान हो, न ही उसमें फलाशक्ति हो, फल की कोई आसक्ति हो। फल की आसक्ति से युक्त होकर बुद्धि से हम, बुद्धि में फलाशक्ति भी नहीं होनी चाहिए और न ही बुद्धि के अंदर कर्म की कोई लिप्तता होनी चाहिए। इस पर एक छोटा सा उदाहरण मुझे स्मरण हो रहा है कि एक बार ब्रज में गोपियां, वो चाहती हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता मिले, हमें श्री कृष्ण हमारे पर रीझ जाएं, खुश हो जाएं और उनका कृपा प्रसाद हमको मिले, हमेशा कृष्ण की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहती हैं गोपियां। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें देखो, मैं प्रसन्न तुम्हारे पर होऊंगा, उसके लिए तुम कुछ अच्छा काम करो। अच्छा काम क्या करो कि सत्कर्म करो। गोपियां पूछती हैं क्या, बोले वो गंगा यमुना जी के दूसरे तट पर एक महात्मा जी आए हैं, उनको जाकर दुर्वासा ऋषि उनको भोजन करा के आओ। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था, गोपियों ने बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर भोजन, पकवान, मिष्ठान, खीर तैयार की, बहुत बढ़िया भोजन बनाया, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान पकवान बना करके, खीर बना के सोचा महात्मा जी को बहुत प्रेम से जिमा करके आएंगे, अच्छा भोजन करा के आएंगे। खूब बड़े प्रेम के साथ भोजन तैयार किया और भोजन की थाल में भोजन सजाया और थाल लेकर के जैसे ही महात्मा जी को भोजन कराने के लिए गए तो बरसात, सावन का महीना है, बरसात हुई थी तो यमुना जी खूब चढ़ी हुई थी, दोनों तटों को बराबर भरे हुए थे, उछल उछल कर यमुना जी बह रही थी। तो तट पर पहुंच पर गोपी मन में सोचने लगी, इतना यमुना जी का बहाव इतना तेज है, इतना जल भरा हुआ है कि नाविक लोग भी नाव नहीं चला रहे थे, मलाह लोग सब अपनी अपनी नाव छोड़कर बैठे हुए थे। गोपियां मन में सोचने लगी कि हम कैसे जाएं और कैसे महात्माओं को भोजन करा करके आए, चिंतित सी खड़ी थी। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण वहां आ पहुंचे। कृष्ण उनसे, गोपियों ने कृष्ण ने कहा तुम सब खड़ी यहां क्यों, बोले हम चाहती थी कि जाकर दुर्वासा ऋषि को भोजन करा करके आए, परंतु क्या करें, इतना जल भरा हुआ यमुना में, डर लग रहा है, जाने की हिम्मत नहीं बढ़ रही है और कैसे यमुना पार जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम चिंता क्यों करती हो, यमुना जी से कह दो कि यदि कृष्ण ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया हो तो हे यमुने आप उन्हें रास्ता दे दो। गोपियां मन में सोचने लगी इस काले कलूटे की करतूत तो हमको सब मालूम है, कितना ये छेड़ा छाड़ी करते हैं और कितनी ये हमारे साथ किस तरह से हमारी मुटकियां फोड़ और हमारे वस्त्र छीन और इस तरह की इनकी हरकतें, और कह रहे हैं कि इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया हो तो हे यमुना मार्ग दे दे। परंतु फिर भी उन्होंने मन में हंसती हुई और यमुना जी के पास गई और यमुना जी से कहा तो यमुना जी शांत हो गई और यमुना ने रास्ता दे दिया। बीच में सुंदर सी सड़क निकल आई, गोपियां बड़े आराम के साथ अपना अपना भोजन लेकर के दुर्वासा जी के पास पहुंची और दुर्वासा जी को भोजन दिया और दुर्वासा जी ने भी बड़े प्रेम के साथ वो भोजन किया। जितने थाल उनके आगे गोपियों ने रखे वो सारे थाल भर भर के खूब बड़े एकाग्र उस भोजन को कर गए। इतने प्रेम से भोजन किए कि शिष्यों तक को नहीं दिया और गोपियों की तो बात ही क्या थी, जो शिष्य पास में बैठे हुए थे उन्हें भी नहीं भोजन मिला। और बड़े प्रेम से उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने भोजन किया और भोजन करने जब थालियां सारी साफ कर दी गई तो औरों ने तो थाल धोधा करके उसका जरा सा प्रसाद लेकर के अपने को संतुष्ट किया, अर्थात दुर्वासा जी संपूर्ण भोजन बड़े प्रेम के साथ में कर गए। जब पूरा भोजन करने के बाद गोपियां वापस लौटने के लिए आई तो वही हालत थी, यमुना जी चढ़ी हुई थी, मार्ग नहीं था, फिर बड़ी चिंता। और जब दोबारा चिंता में पड़ी तो दुर्वासा जी से पूछा, दुर्वासा जी ने कहा तुम क्यों सब चिंता कर रही हो, तो बोले इसलिए महाराज कि हम घर जाना चाहती हैं पर रास्ता बिल्कुल यमुना जी चढ़ी हुई है, कैसे जाएं। तो दुर्वासा जी ने कहा कि यमुना जी से कह दो, जाकर हमारा नाम लेके बोलो कि हे यमुने यदि दुर्वासा जी ने कभी भोजन ग्रहण किया हो तो रास्ता दे दो। गोपियां मन में सोच रही हैं कि अभी अभी तो हमने इतना सारा भोजन कराया, अपने हाथ से कराया है, अपने हाथ से उनके लिए भोजन लेके गए और फिर कहते हैं कि हमने भोजन ही नहीं किया। तो यमुना जी के पास जाकर जैसे गोपियों ने ये बात कही तो फिर यमुना जी ने उन्हें मार्ग दे दिया। अब गोपियां असमंजस में है कि आखिर सत्य क्या है, बात क्या है। वो खाने के बाद भी कहते हैं कि मैंने भोजन किया ही नहीं और कृष्ण इतनी छेड़ाखानी करने के बाद भी कहते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया है, तो आखिर सत्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण से ही पूछा गोपियों ने तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना हम लिप्यते न, मैं कर्म में लिपायमान नहीं होता और नहीं मेरा कोई कर्म के साथ अहम भाव है और कर्म में मैं बुद्धि रखकर कर्तृत्व बुद्धि रखकर मैं कर्म नहीं करता हूं और ना ही कर्म के फल में मेरी कोई आसक्ति है। बुद्धि कर्म के साथ, जो बुद्धि कर्म में लिपायमान नहीं होती माने कर्म में कर्तापन नहीं होता और नहीं कर्म के फल के साथ आसक्ति होती है, सो कर्म कभी बंधन का कारण नहीं बनता है। इस रहस्य को कौन अच्छी तरह से समझती है, बोली यमुना जी ज्ञानी के इस आचरण को, इस रहस्य को जानती हैं, इसलिए यमुना ने उन्हें मार्ग दे दिया। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि बुद्धि में कर्तृत्व का अभिमान न हो और कर्म में, कर्म करते हुए कर्म के फल में भी आसक्ति न हो। ये दो बात बुद्धि के साथ, बुद्धि से न तो कर्म में और न कर्म फल में आसक्ति से रहित होकर के यदि बुद्धि को सम रख करके हम कर्म करते हैं तो वो हमारे लिए कभी बंधन का कारण नहीं है। इसलिए बुद्धि में समता ज्ञान है और मन में प्रसन्नता भक्ति है। मन को मत बिगड़ने दो, अपने मन को समझाओ, अपने मन से कहो, अपने मन को सिखाओ, पढ़ाओ, रटाओ, जितना कहना है जितना सुनाना है, बोले सुनने के लिए उपदेश जितना देना है वो किसको दे, अपने मन को दे कि हे मन तुझे किसी भी अवस्था में देखो, इस कार्य से आपके भीतर की प्रसन्नता, आपके मन की प्रसन्नता बिगड़े नहीं, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि यदि मन बिगड़ गया तो लोक भी बिगड़ गया, परलोक भी बिगड़ गया, और यदि मन संवर गया तो लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा। और मन को बचाना है, मन कहीं भटक न जाए, मन और मन को भटकने से बचा सकते हैं तो बोले किससे बचा सकते हैं, अपनी बुद्धि से। इसीलिए भगवान ने मन के ऊपर नियंत्रण हो, बोले किसका, बुद्धि का, और बुद्धि हमेशा भगवान के श्री चरणों, भगवान में समर्पित हो, परमात्मा में लगी हुई हो। इस प्रकार अपनी बुद्धि को परमात्मा पर बनी रहे और बुद्धि परमात्मा से विचलित न हो उसके लिए, नहीं तो बुद्धि हटी नहीं, परमात्मा से हटी नहीं, बुद्धि में अहंकार आ जाएगा ना, और अहंकार के साथ ही व्यक्ति का पतन आरंभ हो जाता है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना की गई है कि प्रभु आप मेरे, आप कृपा करें ये अहंकार बुद्धि में न आने पाए, बुद्धि में जो मैं अहम है वो मिट सके, समाप्त हो सके, और मैं आपको प्राप्त कर सकूं। इस भावना के साथ ईशावास्य उपनिषद के 17वें मंत्र पर कल विचार कर रहे थे, वायु अनिलो मृतम तथेदम भस्मांत शरीरम, जो ये पंचभूत का शरीर है, स्थूल शरीर भस्म हो गया है, सूक्ष्म लिंग शरीर प्राणवायु के साथ सूत्रात्मा में उपलक्षित हुआ है, प्राप्त हुआ है, और अब तू केवल ओम का स्मरण कर, ओम का और अपने सत्कर्म का स्मरण कर, जो सत्कार्य किए उस सत्कार्य का कर्म का स्मरण कर, ओम क्रतो स्मरह क्रत स्मरण क्रतो स्मरण क्रत स्मरण, केवल स्मरण कर, याद कर, बोले किसको, अपने किए हुए का स्मरण कर, अब तो स्मरण कर अपने किए हुए का स्मरण कर, माने जो सत्कर्म किए, अच्छे कार्य किया, क्या किया, बोले हमेशा व्यक्ति को स्मरण करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, हम स्मरण करते हैं मैं पहले ऐसा था, महात्मा लोग कहते हैं ना भैया भूल जाओ, अपने जो पीछे तुम्हारा जो कुछ था उस सब को भूल जाओ, ये मत याद करो कि पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये दुख, अर्थात कोई अप्रिय घटनाएं हुई, जो अप्रिय घटनाएं हुई महात्मा लोग कहते हैं उसे बिल्कुल मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था, ये हो गया था, जो माने कोई अपराध हो गया था, तो उन सब को मन में लाकर उन्हें याद मत करो, उनकी पुनरावृत्ति मत करो, उन सब को भूल जाओ, और तब क्या करो, अच्छे संकल्प और अच्छे शुभ संकल्प से जो शुभ कार्य हुए, अच्छे हुए, उस अच्छे को याद करो, स्मरण मधुर मधुर स्मरणम, मधुर स्मरण होना चाहिए, परंतु हम लोगों का स्वभाव है कि मधुर स्मरण को तो हम छुपा लेते हैं और जो कड़वा स्मरण है उन्हें याद रखते हुए चलते, इसे भूल जाना चाहिए, इसलिए याद रखो, स्मरण में रखो, बोले किसको, केवल केवल भगवान का नाम स्मरण रहे, ओम क्रतो स्मरण, यदि ओम स्मरण है, ये भगवान का नाम स्मरण करते हुए ये शरीर छूट भी गया तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि पांचाली के, द्रौपदी के पांच पुत्र अश्वत्थामा ने उन्हें सोते हुए रात्रि के सोते हुए उनको समाप्त कर दिया कि उनके पांचों के सिर काट करके दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा साथ लेकर चले गए। घटना बड़ी हृदय विदारक थी, दुख की थी, और पांचाली ने जब यह समाचार सुना कि उसके पांचों पुत्रों की मृत्यु हो गई है तो इस घटना के साथ व्यथित होकर पांचाली रुदन करने लगी, रोने लगी। और इसी के साथ ही अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि तुम्हारे पांचों पुत्रों के हत्यारे को पकड़ के मैं तुम्हारे पास लेके आऊंगा और फिर आप उसे जो दंड देंगे। तो पांचाली रुदन करने लगी, रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, अश्वत्थामा भागे और यहां तक कि व्यास जी के पास पहुंच जाते जाते भय के कारण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर लिया। भागवत में कई बार ये कथा आप लोगों ने सुनी पड़ी होगी। सार रूप में केवल इतना मैं कहना चाहती थी कि जब ये इस प्रकार अश्वत्थामा को भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से उसने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण किया अर्जुन ने, भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानते हैं पर लौटाना नहीं जानते, इसलिए तुम ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को लड़ाकर ब्रह्मास्त्र को वापस कर लो, लौटा लो। और इस प्रकार अश्वत्थामा को भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से अर्जुन ने उन्हें बंदी बना लिया।